हवेली की चकाचौंध अब धीरे धीरे सिमटने लगी थी। कुछ देर पहले तक जो हॉल हंसी और म्यूजिक से गूंज रहा था, अब वहां बस हल्की सी खामोशी बची थी। मेहमान एक एक करके अपने कमरों की ओर जा चुके थे, नौकर बाकी काम समेट रहे थे और रात अपनी गहराई में उतर रही थी। इसी सुकून भरे सन्नाटे में श्यामली रत्ना देवी के कमरे में थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और रत्ना देवी बिस्तर पर टिक कर बैठी थी। श्यामली उनके पास बैठी थी, चेहरे पर लही अपनापन और स्नेह। रत्ना देवी ने उसे प्यार से देखा। बहू, अब जाओ, विशु तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। श्यामली हल्का सा मुस्कुराई। सासू माँ, चली जाऊंगी, लेकिन आपके साथ रहने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं। रत्ना देवी की आंखों में नरमी आ गई। श्यामली ने धीरे से उन्हें सहारा देकर ठीक से बिठाया, फिर दवाई लेकर आई। पहले ये ले लीजिए। उसने बड़े ध्यान से उन्हें दवाई दी, फिर पानी का गिलास थमाया। दवाई लेने के बाद श्यामली नीचे बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगी। रत्ना देवी ने उसे देखा। अरे रहने दो बहू। लेकिन श्यामली ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे करने दीजिए। आपके पैरों में कितना दर्द रहता है मुझे पता है। उसकी उंगलियां बहुत नरमी से दबा रही थीं। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर श्यामली ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ, उस रोज आपके लिए मुझे हवेली से निकालना कितना मुश्किल रहा होगा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस समझ थी। रत्ना देवी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उन्होंने खीरे से उसका सिर सहलाया। हाँ, बहुत मुश्किल था। उनकी आंखों में पुराने दर्द की हल्की परछाई उभरी, लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली। आज मैं बहुत खुश हूं। श्यामली ने सिर उठाकर उन्हें देखा। रत्ना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे लिए विशु की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चाहे वो अक्षरा के साथ हो या तुम्हारे साथ। श्यामली की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो फिर से उनके पैरों को दबाने लगी। कमरे में अब एक सच्चा रिश्ता महसूस हो रहा था, सास और बहू का नहीं, बल्कि दो दिलों का, जो एक दूसरे को समझ चुके थे। उधर विश्वनाथ अपने कमरे में था। कमरे की लाइट्स धीमी थीं और वो खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में हल्का सा गिलास जैसे उसने छुआ तक नहीं था। उसकी नजरें दरवाजे पर थीं। वो श्यामली का इंतजार कर रहा था। आज की रात उसके लिए खास थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्का सा नशा भी, शायद खुशी में थोड़ा ज्यादा पी लिया था। तभी दरवाजा खुला। विश्वनाथ ने तुरंत पलट कर देखा, श्यामली, लेकिन अंदर आई थी अक्षरा। विश्वनाथ थोड़ा चौंका। तम, श्यामली कहाँ है? अक्षरा ने धीरे धीरे अंदर आते हुए कहा, वो आज रात माँ के कमरे में ही रुकने वाली है, आप सो जाइए। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन नजरें बहुत कुछ छुपा रही थीं। विश्वनाथ ने हल्का सा सिर हिलाया, कुछ कहने ही वाला था, फिर चुप रह गया। अक्षरा ने कमरे में चारों तरफ नजर डाली, फिर उसकी तरफ बढ़ी। वैसे आपने सबके साथ तो खूब एंजॉय किया। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन मेरे साथ नहीं, विश्वनाथ ने थोड़ा असहज होकर कहा। अक्षरा, अभी देर हो गई है, बस एक ड्रिंक, उसने बीच में ही कहा, इतना तो बनता है। नहीं, रहने दो, विश्वनाथ ने मना किया, लेकिन अक्षरा नहीं मानी। वो टेबल की तरफ गई जहां एक गिलास रखा था, वही ड्रिंक जो विश्वनाथ ने श्यामली के साथ पीने के लिए रखी थी। अक्षरा ने उसे उठाया, एक पल के लिए उसकी नजरें ठहरी और फिर उसने चुपके से उसमें कुछ मिला दिया। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को शक भी ना हो। वो वापस आई और गिलास विश्वनाथ की तरफ बढ़ा दिया। अब मना मत करो यार, विश्वनाथ ने उसे देखा, फिर गिलास ले लिया। धीरे धीरे उसने एक घूंट लिया। अक्षरा उसके सामने बैठ गई तो उसने बात शुरू की, आप श्यामली को कितना प्यार करते हैं? विश्वनाथ ने बिना सोचे कहा, बहुत। उसकी आवाज साफ थी और सच्ची, मैं श्यामली से बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर अक्षरा के चेहरे की मुस्कान एक पल को जमी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। और मैं, उसने धीरे से पूछा, मैं आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती हूं? विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा। अक्षरा, तुम मेरी जिंदगी में एक दोस्त की तरह हो, उसका जवाब सीधा था, बिना किसी घुमाव के। अक्षरा के अंदर कुछ और टूट गया, लेकिन इस बार उसने कोई भाव नहीं दिखाया। तभी विश्वनाथ ने अपना सिर हल्का सा पकड़ा, अजीब सा लग रहा है, उसकी नजरें धुंधली होने लगी। मुझे नींद आ रही है, उसकी आवाज भारी हो गई। अक्षरा ने शांत नजरों से उसे देखा। सो जाओ। विश्वनाथ लड़खड़ाते हुए बिस्तर तक गया और बिना कपड़े बदले ही लेट गया। कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में चला गया। अक्षरा, तुम भी जाओ, उसने धीमे से कहा। अक्षरा ने सिर हिलाया और बाहर निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और बिस्तर पर सोया हुआ विश्वनाथ। कुछ पल बीते, फिर दरवाजा एक बार फिर खुला। अक्षरा वापस अंदर आई। उसके कदम अब धीमे थे, लेकिन आंखों में वही ठान ली हुई चमक थी। वो दरवाजा बंद करके धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। विश्वनाथ गहरी नींद में था, बिल्कुल बेखबर। अक्षरा उसके पास खड़ी हो गई। उसकी नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। कमरे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी शांत लग रहा था। अक्षरा के होठों पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन ये मुस्कान किसी तूफान की शुरुआत थी। जहां एक तरफ मासूम सुकून था और दूसरी तरफ खामोशी में छिपी साजिश। उसी हवेली के एक दूसरे कमरे में अदिति और आर्यन अपने कमरे में आ चुके थे। बाहर की हलचल अब यहां तक नहीं पहुंच रही थी। कमरे में हल्की रोशनी और सुकून भरी खामोशी थी। अदिति बिस्तर पर बैठी थी, थोड़ी थकी हुई लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आर्यन उसके पास आकर बैठ गया। आज तो तुमने पूरी जासूसी कर ली, अदिति हल्का सा हंसी। जरूरी था, वो अक्षरा कुछ ठीक नहीं लग रही। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अब छोड़ो भी, थोड़ा हमारे लिए भी टाइम रखो। अदिति ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उसके कंधे पर सिर टिका दिया। आर्यन ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों कुछ पल ऐसे ही चुप रहे, बस एक दूसरे की नजदीकियों को महसूस करते हुए। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये पल उनका अपना था, सुकून भरा और बेहद अपना।